પહોંચશે. ગુજરાતી સાહિત્ય કે ઓર ગુજરાતી વ્યાકરણ કે એક મહાન વ્યક્તિ જિનકો મોબાઈલ ડિક્શનરી ઓફ ગુજરાતી લિટરેચર કહા જાતા હૈ ઓર જિન્હોને ગુજરાતી કા શબ્દકોશ લિખા, એસે એક મહાન વ્યક્તિ કેકા શાસ્ત્રીજી, કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રીજી કે નામ સે ઉને જાના જાતા હૈ. ઉનકે વિષય મે એક બહોત પ્રેરણીય ઘટના વર્તમાન ભારત કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ને અપને એક ઇન્ટરવ્યુ શાયદ 95-96 મે એક ઘટના કા ઉલ્લેખ કિયા થા. ઉન્હોને કહા કે મેં કેકા શાસ્ત્રીજી કે સાથ 10 દિન તક રહા ઓર મેને ઉનકો બહોત નજદીક સે દેખા. ૨૦૦૬ મે ઉનકી મૃત્યુ હુઈ, 101 વર્ષ કે થે વો ઓર યે ઘટના હૈ 96 કી. તબ ભી વો બૂઢે હી થે. ઉન્હોને લિખા, હમ દોનો બસ મે સફર કર રહે થે, હમે કહીં જાના થા ઓર જબ ભી બસ કહીં રુકતી થી, કોઈ રેલવે ટ્રેક બીચ મે આ ગયા યા ઓર કહીં, તો મેને દેખા કે કેકા શાસ્ત્રીજી તુરંત અપની ડાયરી ખોલતે થે ઓર લિખના આરંભ કરતે થે. એક મિનિટ ભી વેસ્ટ નહીં કરતે થે. હમ લોગ મોદીજી લિખતે હૈ યા ઉસ સાક્ષાત્કાર મે ઉન્હોને કહા કે હમ લોગ યહાં વહાં દેખતે થે, ઇધર ઉધર ટાઈમ વેસ્ટ કરતે થે, પરંતુ વો તુરંત અપની ડાયરી ખોલતે થે ઓર કુછ ના કુછ લિખના ચાલુ કર દેતે થે. બાદ મે ઉન્હોને કહા કે હમ એક ધર્મશાલા મે રુકે, વો જો ધર્મશાલા થા છોટા સા થા ઓર હમ તો અપને સાથ અપના વિસ્તર અપની તકિયા સબ કુછ લાયે થે, પરંતુ સમય પર કુછ દિખ નહીં રહા થા. પરંતુ મેને યે દેખા કે કેકા શાસ્ત્રીજી, પ્યાર સે ઉને કેકા શાસ્ત્રી કહેતે હૈ, વો ઉસ ઉમર મે ભી શાયદ 80 કે ઉપર હી થે. તબ જમીન પર લેટ ગયે ઓર જમીન પર સો ગયે, ઉને કિસી ભી ચીઝ કી આવશ્યકતા નહીં, ના બિસ્તર કી આવશ્યકતા થી, ના તકિયે કી આવશ્યકતા થી. ઓર ઇસલિયે મેં ઉને અપના ગુરુ માનતા હું. ઇસ ઘટના કા વર્ણન ઉન્હોને કભી કિયા, યે એક વ્યક્તિ અપની કર્તવ્ય પરાયણતા સે, અપની કર્તવ્ય નિષ્ઠા સે ઓર સમય કે સદુપયોગ સે ઇતના મહાન બન ગયા. પદ્મશ્રી ભી ઉનકો દિયા ગયા બાદ મે. કહેને કા ભાવ, મહાનતા કી શિખર તક પહોંચને કે લિયે, કે શિખર તક પહોંચને કે લિયે એક મિનિટ ભી વેસ્ટ ન કિયા જાય. ઓર જૈસી પરિસ્થિતિયા હૈ, જો કુછ મિલા હૈ ઉસી મે સુખી રહેકર, ઉસી મે સંતુષ્ટ રહેકર આગે બઢના. જબ જીવન કા લક્ષ્ય હી હૈ આગે બઢના, તો બહાર કી કોઈ ભી પરિસ્થિતિ હમે રોક નહીં સકતી. બહાર કે કોઈ ભી અભાવ, અપ્રાપ્તિય આત્મા કો રોક નહીં સકતી. જિસને ઠાન લિયા હૈ, જિસને નિશ્ચય કર લિયા હૈ કે આગે બઢના હી હૈ, चाहे धरती हो कितनी कठोर, फूल जिसने उगाने की सौगंध ली वो मगन हो के चलता रहे। इस ब्राह्मण जीवन में एक गहरी अंतर्मुखता की आवश्यकता है, ये देखने के लिए कि जब से ब्राह्मण बने, जब से बाबा के बने, तब से लेकर अब तक मैंने क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या पाया है, कौन सी पूंजी मेरे पास है और मैं अब क्या कर रहा हूं, क्या समय के प्रति जागृत हूं या सोया हूं, अंदर से चेतना कितनी स्मृति में है, या फिर दुखों से लड़ते लड़ते, या फिर पुरुषार्थ करते करते, या फिर हिसाब किताब चुक चुक करते करते आत्मा इतनी थक गई है कि अभी कुछ भी उसे ठीक नहीं लगता इस ब्राह्मण जीवन में। एक अज्ञात सी उदासी पुरुषार्थ के प्रति, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, बहुत कर लिया, जो करना था कुछ भी नहीं मिला, क्या वो मेरी स्थिति तो नहीं, क्या वो मैं तो नहीं, स्वयं को देखना है। संडे की अव्यक्त वाणी बाबा ने कहा, वो जो संसार में तीर्थ है जहां तीन नदियां मिलती है उसको क्या कहा जाता है, अलाहाबाद, और ये क्या है, अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान। तो हम अभी अल्लाह के आबाद किए हुए स्थान पर बैठे हैं, और जो अल्लाह का आबाद किया हुआ स्थान है, यहाँ के प्रकंपन, यहाँ की किरणें, यहाँ का वायुमंडल वातावरण, इसमें एक अलौकिक शक्ति है, ऐसे शक्तिशाली वायुमंडल में जो संकल्प किया जाए वो पूर्ण न हो ये हो नहीं सकता, इसीलिए शक्तिशाली संकल्प करने हैं, पावरफुल संकल्प करने हैं, जो मन की दुर्बलता है, मन में जो वासना का प्रभाव है उस प्रभाव से चेतना मुक्त हो जाए, उसमें उद्यम, उसमें संयम, उसमें स्थिरता, उसमें पुरुषार्थ फिर से जागृत हो जाए, फिर से आत्मा उठ जाए, क्योंकि हम शायद सो रहे हैं, संसार के लोग अज्ञान की नींद में सो रहे और ब्राह्मण विस्मृति की निद्रा में। सुबह की साकार मुरली मौत सामने खड़ा है, सुबह की साकार मुरली ये गीता एपिसोड चल रहा है, सुबह की साकार मुरली यदा यदा ही धर्मस्य, वो आया है दुखों से दूर करना है स्वयं को, तो उसकी आंखों में आंखें डालो, देखो उसको, शायद पुरुषार्थ करते करते कहीं हम थक ना गए हो और सो गए और आधार के लिए एक तकिया ले ली। इस तकिया का वर्णन बहुत सारी मुरलियों में 95, 92 कभी वरदान में आया है, आलस अलबेलेपन की तकिया, बाबा ने कहा दनलप की तकिया, कहीं मैं इस तकिए को लेकर सो तो नहीं रहा हूं, खुद को खुद ही जगाना है, दूसरा कोई आए और मुझे जगाए ये समय समाप्त हुआ, खुद ही को जगाना है, खुद ही को जागृत करना है। तो ये जो दनलप का तकिया है, इस ब्राह्मण जीवन में कहीं ना कहीं हर एक इसको लेकर पकड़ा हुआ है, सो रहा है इसके ऊपर। तो आज की इस क्लास में हम इसी तकिए की चर्चा करेंगे, ऐसे वो कौन सी बातें हैं जो कि हमारे लिए दनलप का तकिया बन गई है, और जैसे कि बाबा ने ही कई सारी मुरलियों में कहा है, सबसे पहली है बात है आलस और अलबेलेपन का ये तकिया। आलस किसे कहा जाएगा, अपने कर्तव्य की विस्मृति ही आलस्य है, कभी मधुबन निवासियों से बाबा ने मुलाकात की थी और बाबा ने कहा था तुम मधुबन निवासियों को अपने अधिकार अधिक याद है, कर्तव्य कम। हमारे कर्तव्य क्या है? संडे की अव्यक्त वाणी बाबा ने कहा मास्टर विधाता बनो। आठ चीजों में मास्टर विधाता बनो। पहला तो है ज्ञान। सारे दिन भर हमारे मुख से ज्ञान ही निकलता रहे। किसी साकार मुरली में बाबा ने कहा था मरने की हालत में हो, बिस्तर पे हो, अभी प्राण छोड़ने वाले हो, तब भी मुख से ज्ञान सुनाते सुनाते शरीर को छोड़ो। यहां तक भगवान कह रहा है ज्ञान गुण शक्तियां, और शक्तियां वो दे सकेगा जो स्वयं शक्तिशाली है। याद की शक्ति, ये एक दूसरा बताया बाबा ने, याद की शक्ति देते रहो। याद की शक्ति दो दे वो सकेगा जिसने स्वयं में याद की शक्ति भरी है, जो जागृत है, जिसे पता है कि याद एक कमाई है और ये कमाई केवल अमृत वेले और केवल नुमाशाम करने की नहीं है। सारे दिन भर बीच बीच में समय निकालकर शरीर से अलग हो जाना, बार बार रूहानी ड्रिल करते रहना, तो ही आत्मा में बल भरता है। उमंग उत्साह, रूहानी दृष्टि और रूहानी प्यार कितना दिया। दो तीन दिन पहले वरदान था, यदि कोई आत्मा कोयले जैसी भी काली हो परंतु तुम यदि उसको दृष्टि दो तो उसका कालापन कम हो जाए। इस दृष्टि को कितना प्योर बनाया है। कुछ दिन पहले मुरलियों में था अंग अंग क्रिमिनल है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल ये आंख है। इन आंखों को ही शुद्ध करना है, इन आंखों को ही पावन करना है। पवित्रता की यूपी ग्रुप से बाबा ने कहा था पावनता की अंजलि दो, पावनता के तुम भंडार हो। ऐसी अखंड पवित्रता इधर भरनी है तो कहीं जाके आंखों से वो निकलेगी। श्रेष्ठ संग देना है, सहयोग देना है। ये आठ बातें बाबा ने कहा था। दिन भर तुमको मास्टर विधाता बनना है, ज्ञान के विधाता, योग के विधाता, शक्ति के विधाता, गुणों के विधाता। सारे दिन भर देते रहो। अपने आप को देखना है मैंने आज क्या क्या दिया। और ज्ञान केवल मुख से ही देने की वस्तु नहीं है। अव्यक्त वाणी है किसी में बाबा ने कहा था 4 दिसंबर 1995, मार्क इससे नहीं मिलेंगे कि किसने कितने भाषण दिए, मार्क इससे नहीं मिलेंगे कि किसने कितने सेंटर खोले। उदाहरण दिया बाबा ने किसी के 30 सेंटर है, उसमें से 15 हिल रहे और 15 ठीक, तो केवल नाम जमा किया, कमाई नहीं की। फाइनल मार्क्स मिलने का साधन है अव्यक्त महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा। आत्माओं को योग्य कितना बनाया और स्वयं को शक्तिशाली कितना बनाया, इस पर फाइनल मार्क्स मिलेंगे। स्वयं में पवित्रता की धारणा कितनी रही, ब्रह्मचर्य कितना अखंड रहा, स्थिति जिसकी श्रेष्ठ है वो सबसे आगे है, पवित्रता जिसकी आगे है वो सबसे आगे है। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला तकिया जिससे बहुत अधिकांश आत्माएं सो रही है वो है आलस, वो है अलबेलापन। और इसका अर्थ ये नहीं है कि बस बिस्तर पर सो रहे वो तो बहुत स्थूल हो गया। सूक्ष्म है कर्तव्य की विस्मृति, सूक्ष्म है हम क्या करने आए थे और कर क्या रहे हैं। आए थे तपस्या करने, आए थे तपस्वी स्वरूप बनने, आए थे ज्वालामुखी योगी बनने, और क्या बन के कर रहे हैं। सेवाओं में ऐसे खो गए कि तपस्या रह गई। जिन्होंने सेवा करते करते ज्ञान और योग को छोड़ दिया वो धीरे 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 ज्ञान मुक्त और योग मुक्त होते जाते और एक दिन लंबी छुट्टी पर चले जाते। इस आलस से स्वयं को बाहर निकालना है, जागृति लानी है स्वयं में, मुझे करना क्या है और मैं क्या कर रहा हूं, उठाना है स्वयं को, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, इतना ऊंचा लक्ष्य, क्लियर गोल, हाई गोल, इंग्लिश में कहते हैं नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम, छोटा लक्ष्य रखना अपराध है, बड़ा लक्ष्य रखना है, बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना है। एक ऐसा व्यक्ति बनना है कि जिसमें व्यर्थ जरा भी नहीं हो, जिसमें निगेटिव जरा भी नहीं है, ये लक्ष्य है। और हमारे रहे हुए कर्तव्य, आप सबको एक काम दे रहे, ऐसे 10 बातें लिखनी है जो ब्राह्मणों के रहे हुए कर्तव्य है, जो अब तक हमने किया नहीं है। मीडिया बहुत बड़ी सेवा है, परंतु सत्य इतना सस्ता नहीं कि मीडिया पर मिल जाए, सत्य साधना है, प्रचार बहुत है, परंतु हमारा लक्ष्य केवल प्रचार करना नहीं है, योग्य आत्माओं को तैयार करना है। इस आलस से स्वयं को जगाना है, उठाना है, और इसके लिए विधि है सारे दिन भर ज्ञान का चिंतन बुद्धि में होता रहे, और कोई दूसरी बात ही नहीं, बुद्धि में ज्ञान ही गूंज रहा है। आज बाबा ने स्लोगन में क्या कहा, वरदान में क्या कहा, इस वाक्य का क्या अर्थ है, उस वाक्य का क्या अर्थ है, कोई मिले तो केवल ज्ञान की चर्चा, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान में डुबो के रखना है, और बीच बीच में अशरीरीपन, बीच बीच में शरीर से डिटैच। दादी उस दिन कह रही थी, यदि बाप से प्यार है तो शरीर से अलग हो जाओ, शरीर पकड़ के है, इस ग्रिप को थोड़ा ढीला करना है। दूसरा है बहानेबाजी की तकिया। रमेश भाई साहब ने कभी बाबा से पूछा था, बाबा आप ये क्या कहते रहते हो, हमेशा हर बात में नंबरवार नंबरवार नंबरवार। बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, एक बात में सभी नंबर वन है, और वो कौन सी, बहानेबाजी। दादी जानकी ने कभी कहा, झूठ बोलना पाप है, पर उससे भी बड़ा पाप है बहानेबाजी, झूठ से भी बड़ा। ज्ञानामृत में कभी आर्टिकल आया था, मुरली न सुनने के 108 कारण, इसको और आगे बढ़ाओ, मुरली चिंतन न करने के क्या कारण है, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं, क्यों बहाने हैं जीवन में, हर चीज का बहाना। ब्रह्मा बाबा के 33 वर्ष के पुरुषार्थ में एक दिन भी ऐसा नहीं था कि जिसमें अमृत वेला मिस हुआ। हमारा क्या हाल है, और वो केवल अमृत वेला उठना ही पुरुषार्थ नहीं है, कितना वो शक्तिशाली है, कितना जागती ज्योत बनकर बैठे है, कितनी पावर अंदर भर रही है आत्मा में। ऐसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति हो अमृत वेला, कि लगे कि आनंद से भर गई आत्मा, परम धाम की सारी शांति अवतरित हो गई है, यहाँ परम धाम का सारा आनंद यहाँ आ गया है, ऐसी अनुभूति, लेश मात्र नींद नहीं, लेश मात्र झुटका नहीं। ये तब होगा जब आत्मा जागृत है, जब हल्के से संकल्प है ठीक है करना है, तब नहीं होगा। जागृति, इनर अवेकनिंग की आवश्यकता है। तो पहला तो आलस है जिसमें आत्मा डूब गई है, इस आलस से स्वयं को बाहर निकालना है, और दूसरा है बहाने, कोई भी बहाना नहीं चलेगा पुरुषार्थ के लिए, तो कोई भी नहीं चलेगा ब्रह्मचर्य के लिए, कोई भी नहीं चलेगा श्रीमत के लिए, कोई भी नहीं चलेगा, श्रीमत ही जीवन है, श्रीमत के लिए जीवन है। यदि उसमें छेड़छाड़ कर रहे, यदि उसमें मॉडिफाई कर रहे श्रीमत को अपने अनुसार, तो शायद शायद मार्क्स कम होंगे। एक बहुत आलसी व्यक्ति एक बार किसी जंगल से गुजर रहा था, और जंगल में उसे शेर की आवाज आई, सीधा झाड़ पर चढ़ गया, देखा ऊपर से एक लोमड़ी बहुत घायल है, जिसके पैरों पर चोट लगी है, दोनों पैरों पे रेंगते हुए चल रही है, बहुत दया आ गई, सोचने लगा बिचारी का क्या होगा, कौन इसे इसकी देखभाल करेगा। और देखा एक शेर आया उधर से, एक मांस का टुकड़ा उसके मुख में, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर वो लोमड़ी वहीं थी और उस शेर ने वो मांस का टुकड़ा वहां रख दिया, उसकी मदद की। उसे इतना आश्चर्य हुआ, कैसी प्लानिंग है भगवान की, डिवाइन प्लानिंग ऑफ गॉड, कि जिसका कोई भी नहीं है उसको ये रोटी मिल जाती है, खाने को मिल जाता है। तो उसने सोचा मैं क्यों कमाई करूं, तो वो भी वहां से निकलता है और एक जगह जाकर दो दिन तक बैठा रहता है। अगर भगवान की कृपा हुई, डिवाइन प्लानिंग ऑफ गॉड, तो कोई ना कोई मुझे भी कुछ ना कुछ लाके देगा, और कोई भी कुछ भी नहीं लाता। दो दिन दुखी होता है, चलने लगता है, एक साधु बैठा रहता है, कहता है ये क्या हुआ, उस लोमड़ी को तो दे दिया भगवान ने, मुझे क्यों नहीं दिया। तो साधु बहुत ही अच्छा उत्तर देता है, वो कहता है तुमने भगवान की जो डिवाइन प्लानिंग है, द मास्टर प्लान है, उसको थोड़ा सा गलत समझा। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम लोमड़ी हो, तुम ये सोचो ना मैं शेर हूं और मुझे किसी को देना है। इस सोच को परिवर्तन करो। हमने बहुत पालना ले ली है, संडे की मुरली, मास्टर विधाता अर्थात हर संकल्प हर सेकंड देने वाला, मास्टर विधाता अर्थात निस्वार्थ, मास्टर विधाता अर्थात संपन्न, मास्टर विधाता अर्थात पालनहार, मास्टर विधाता अर्थात राजवंशी, मास्टर विधाता अर्थात फ्राक दिल, मास्टर विधाता अर्थात एक बाप के अतिरिक्त और किसी से भी लेने वाला नहीं था ना संडे, मास्टर विधाता। हमने पालना बहुत ले ली, अब देनी है और सारे विश्व को देनी है। एक एक आत्मा दुखी, आज सुबह की साकार मुरली, एक भी आत्मा नहीं है जो दुखी नहीं है। सुबह की मुरली सुनी ना सबने, एक भी आत्मा नहीं है जो सुखी है, सब दुखी है संसार में, दुखों का सैलाब है संसार में। और यदि हम भी दुखी है तो फिर उनके दुख कौन दूर करेगा, हम पालनहार है। हमें शक्तिशाली बनना है, पावरफुल बनना है, मांगने वाले नहीं है हम। बाबा ने कहा ये रास्ता ही गलत है कि मुझे कुछ दो, सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो, प्रशंसा दो, केयर दो, अटेंशन दो, स्तुति दो, रिकॉग्निशन दो, एक्नॉलेजमेंट दो, हमने इतनी सेवा की हमारा नाम हो, सेवा की अपने आप जमा हो गया है। किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है, किसी कोई हमारा नाम ले इसकी आवश्यकता नहीं, इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी मांगना अर्थात रॉयल भिखारीपन, कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए केवल एक बाबा से लेंगे बस। नरेंद्र मोदी जी ने लिखा अपने गुरु के बारे में कि मैंने देखा उनको संसार से कुछ भी नहीं चाहिए था, जरा भी कामना हुई तो दुख होगा परिणाम में, जरा भी संसार से अपेक्षा रखी तो दुख ही मिलेगा, यहां तक कि इस ब्राह्मण परिवार से भी। किसी से कुछ नहीं मांगना है। तो दूसरा है बहानेबाजी, तीसरा है सुख और सुविधाएं, जितनी सुख और सुविधाएं ज्यादा उतनी साधना कम, क्योंकि सुख और सुविधाओं की आदत आत्मा को बहुत ज्यादा है। और ये मार्ग तपस्या का है, ये मार्ग वैराग का है। यहां किसी मुरली में विदेशियों से मुलाकात 95, बाबा ने कहा था विदेशियों को, डनलप की तकिया हो तो नींद आएगी, अगर पत्थर हो तो नींद आएगी, अपने बाहों को तकिया करके सोना पड़ेगा एक दिन, उसकी भी आदत हो। बेड पर सोने की आदत है, जमीन पर सोने की आदत कितनी है। 56 प्रकार के भोग खाने की आदत है, सूखी रोटी खाने की आदत कितनी है। आत्मा में भोग के संस्कार है और तपस्या तब तक नहीं होगी जब तक भोग की वृत्ति आत्मा के से उखाड़ कर फेंक ना दी जाए। तपस्या, सुख और सुविधाएं है तो बहुत अच्छा, परंतु नहीं है तो भी अच्छा। फैन चल रहा है तो ठीक, बंद हो जाए तो भी ठीक। प्रकृति जीत भी तो बनना है। उसके बाद में तो उससे बड़ी माया है, उससे बड़ा तकिया है डिजिटल तकिया। दिन रात सेवा कहो या कुछ भी कहो, उसको साधन मानकर उसी में डूबे हुए हैं। मोबाइल का प्रयोग ज्ञान, योग और सेवा, बस इन तीन ही चीजों के लिए होना चाहिए। और हम देख रहे वर्तमान में कैसी माया है मोबाइल की, लंबे लंबे मैसेजेस, टेक्स्ट कॉल्स, वीडियो कॉल्स, रोमांटिक टॉक्स, क्या क्या चल रहा है उसमें, और किसमें, ब्राह्मणों के बीच में। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को अपना सहारा बनाना चाहता है सुख दुख का, हिसाब किताब का, जो हो नहीं सकता। सब कुछ जानते हुए भी, सारा ज्ञान होते हुए भी, आत्माओं में दैहिक आकर्षण, और कैसे, मोबाइल से, उसमें उसके चित्र, उसके वीडियो, उसके गीत, उसकी कहानियां, ये संसार के ये चारों चीजें जो है ये किन्हों ने लिखी है, जिनका मन देहभान में डूबा है, और वो यदि हम देखने में लगे हुए हैं तो हमारा मन भी उसी रंग में रंग जाएगा। इसके लिए इन सब चीजों से हमारा कोई सरोकार नहीं, संसार में जो होना है होने दो, वो हमारे लिए माया का ही रूप है। माया बहुत 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 ही सूक्ष्म है। कई सारे कुमारों के फोन आते हैं और पहली लाइन एक ही होती है कि हम वो बात बताना चाहते हैं कि जो बहुत प्राइवेट है और वो किसी को बता नहीं सकते, और शर्म आती है बताने हुए, और वो सीखी कहां से है, मोबाइल से, और कोई साधन ही नहीं है, वहीं से सब कुछ सीखा। सारे दिन भर सेवा, रात में बेचैनी और बेचैन मन, आलस्य वाला, अलबेलापन वाला मन और एकांकी मन बेचैन होता है और विकारों की ओर आकर्षण होता है। एक महान ब्राह्मण आत्मा को विकार का आकर्षण नहीं है, पर आकर्षण तब होता है जब वो खाली हो जाती है। सारा दिन केवल सेवा सेवा सेवा, ज्ञान से मुक्त, योग से मुक्त, और रात में बेचैनी, और रात का वो समय डिजिटल आकर्षण जहां बढ़ जाता है, जहां सोने का समय 10 का है वो 11 हो जाता है, 12 हो जाता है, और उठते तो है अमृत वेला, परंतु वो शक्ति नहीं है उसमें। हर वो चीज जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा है, विष की तरह उसका त्याग कर देना है। वो व्यक्ति भी हो सकता है, वो साधन भी हो सकता है, वो कोई संबंध हो सकता है, वो कोई पुरानी याद भी हो सकती है, पुरानी स्मृतियां हो सकती है, पर वो हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर संबंध जो मेरे और मेरे पुरुषार्थ के बीच है, जो मेरे और मेरे बाबा के बीच है, वो विष है। जज देना है, नहीं चाहिए। हिम्मत का कदम है, पर छोड़ना पड़ेगा। जो भी डिजिटल, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जब भी ऑनलाइन जाओ एक लक्ष्य से ही जाओ, वो लक्ष्य पूरा होते ही वापस आ जाओ। कोई क्लास सुननी है, गए क्लास सुना और वापस। और दूसरी एक माया है शेयरिंग की माया, भेजते रहते हैं, 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 कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं एक दूसरे को, जिसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बाह्य मुखी बनाती है। यदि हमने ये लक्ष्य रखा कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हर एक घंटे में 2 बार ड्रिल करनी है, तो ये सब करने की इच्छा ही नहीं होगी। ना कोई टीवी देखना है, ना कोई मोबाइल में टाइम वेस्ट करना है, ना किसी को कॉल करना है, ना लंबी बात करनी है, ना किसी को टेक्स्ट करना है, ना किसी को कुछ और करना है, क्योंकि बुद्धि बिजी है, हर घंटे में 2 बार ड्रिल करनी है। हमने मन को टारगेट दे दिया, और सबसे बड़ा शस्त्र यही है ड्रिल, बीच बीच में, दिन भर में 1 सेकंड में शरीर से निकलकर परमधाम, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, करते रहना है। आलस, अलबेलापन, बहानेबाजी, सुख सुविधाएं, चौथा बताया डिजिटल तकिया, जिसको लेकर सोए हैं। पांचवा है इकोनॉमी लेसनेस, बाबा ने कहा इकोनॉमी रखनी है हर चीज की, परंतु हम देखते हैं मधुबन में पार्टियां आती है, इतना सारा भोजन ले लिया थाली में आधा छोड़ दिया, चाय पूरा फुल ले लिया आधा पिया आधा रख दिया, कमरे में आते हैं चाबी साथ में ले चले जाते जाते समय, यहां आए थे पुण्य कमाने साथ में पाप ले गए, पेट्रोल की बचत, डीजल की बचत, लाइट की बचत, पानी की बचत, गाफिल है इन सब चीजों से और बोझ चढ़ रहा है सूक्ष्म में, या फिर सूक्ष्म में किसी आत्मा को ऐसा दुख दिया जा रहा है कि उसके संकल्प चल रहे हैं जो हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ने नहीं देगा। इस ज्ञान मार्ग में यदि हमें आगे बढ़ना है तो इस सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं चाहिए। एक भी आत्मा इस ब्राह्मण परिवार के में हमसे दुखी है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बोझ है हम पर। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 1988। ये ब्रह्मा भोजन दुख भंजक भोजन है, इसका एक एक कणा मोहर है, इसमें दुआ भी है दवा भी है। यदि इस अन्न का एक दाना भी हमसे वेस्ट होता है और वो भी भगवान के घर में वेस्ट होता है, अल्लाह के आबाद किए हुए स्थान पर वेस्ट होता है, बोझ है। फल ले लिए बहुत सारे और सारे फल सड़ गए, सोचा कि हम बाद में खाएंगे, अच्छा होता सबको बांट दिए होते और दे दिए होते, बोझ है। हर चीज का सूक्ष्म, बाबा ने कहा था कभी किसी मुरली में, तुम केवल ये देखते हो तुम्हारा कितना जमा हुआ है, तुम ये नहीं देख पाते तुम्हारा कट कितना हो रहा है, तुम्हारा जितना तुम समझते हो बाप के खाते में जमा है उतना नहीं है, बहुत कम है। हर स्टूडेंट एग्जाम लिख के आकर कहता है मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, रिजल्ट आता है तो देखता है इतने कम, क्योंकि उसने केवल पॉजिटिव ही देखा, बहुत सारी चीजें तो देखी ही नहीं, दिन भर में जो हो रही है कितने मार्क्स वेस्ट हो रहे, कितने पर चिंतन कर लिया, पर दर्शन कर लिया, क्या कुछ कर लिया, और हमें याद है तो शक्तिशाली अमृत वेला बस, जिसमें मार्क्स बहुत अच्छे मिले थे, पर दिन में सारे मार्क्स कट। किसी अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है बहुत सेवाएं की और उसका बहुत वर्णन कर दिया, सारे मार्क्स कट। इकोनॉमी, कुछ भी वेस्ट ना हो, या फिर मुझ में मेरे ऊपर कोई खर्चा ना हो, और सबसे बड़ा खर्चा तब होता है जब कोई बीमार पड़ता है, और यदि हम अपनी गलती से बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो बाबा ने कहा वो ज्ञानी योगी नहीं है। इस देह को भी स्वस्थ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो आलस अलबेलापन वाला होगा उसकी टंग बहुत एक्टिव रहती है, कभी पेट ही नहीं भरता है, हर दिन नया नया चाहिए। ऐसा कौन सा पकवान है जो हमने नहीं खाया, बस उसी की फिराक में है, क्योंकि रस यहां है। उसके बाद में अगला है फैमिलियरिटी का तकिया। विकार तो नहीं है, पर दो आत्माओं में फैमिलियरिटी है, दो आत्माओं को एक दूसरे की दिनचर्या पूरी पता है, वो इस समय क्या कर रहा होगा, कर रही होगी, इतना गहराई से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत ज्यादा फैमिलियरिटी के संस्कार, बहुत ज्यादा बात करने के संस्कार, बहुत ज्यादा गिफ्ट शेयरिंग, बातों की शेयरिंग, हर चीज में फैमिलियरिटी है। और योग तो वही आत्मा लगा सकती है जो संसार से डिटैच है, कोई लेना देना नहीं है किसी से, सबके बीच में है, सबके साथ है, परंतु डिटैच। कहीं गए, चार दिन सेवा की, आ गए, खत्म। हजार बार फोन करना, अब क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या रही, क्या नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कभी दादी प्रकाशमणि ने शिविर वालों से ग्रुप में कहा था कि जब मधुबन में आते हैं, सभी शिविर वालों को कहा था, या सेवाधारियों का ग्रुप था शायद, आने के बाद एक बार घर फोन कर देना, हम पहुंच गए, बस बाद में करने की जरूरत नहीं है, रोज ही फोन कर रहे तो यहां है या अभी भी वहीं है। डीप फैमिलियरिटी, अटैचमेंट, योगी अर्थात अनासक्त है, किसी से कोई मतलब नहीं, सबसे प्यार है पर सबसे न्यारा है। और ऐसी आत्मा ही जब योग में बैठती है तो सीधा आत्मा उड़कर परमधाम जाती है, नहीं तो यहां के व्यक्तियों की याद आती रहती है। कल की मुरली में था, उड़ जाए, उड़ जाओ देह और देह की दुनिया से, संबंधों से, फैमिलियरिटी। उसके बाद है फूड, भोजन। भोजन के चार नियम याद रखने हैं। पहला, हंगरलेस ईटिंग। भूख नहीं है फिर भी खाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं है सब कुछ खाया जाए, जो कुछ मिल रहा है सूप ले लो, थोड़ा कुछ ले लो, हो गया। दूसरा है ओवर ईटिंग, और जब जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, आलस समाया हुआ है, तो अपने आप जो व्यक्ति आलसी होता है उसे बहुत खाने की इच्छा होती है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो, सारा रस भोजन में ही है। जबान गुलाम है, गुलाम, मास्टर सर्वशक्तिवान, इन्वर्टेड कॉमा, अव्यक्त महावाक्य, अर्थात स्वाद से परे। हमारा बहुत ऊंचा लक्ष्य है, भोजन का बहुत महत्व है माना, पर वही एकमात्र लक्ष्य नहीं है, वो भी एक तकिया है। दूसरा नियम है भोजन का ओवर ईटिंग। तीसरा नियम है भोजन करते करते मन की स्थिति, प्रसन्नता से, कंप्लेंट से, दुख में खा रहे हैं या फास्ट फास्ट खा रहे हैं। और चौथा है टाइप ऑफ फूड। दो प्रकार के भोजन नहीं करने हैं, एक तो वो भोजन जो उत्तेजना उत्पन्न करे, इंद्रिय जिससे चलायमान हो, और दूसरा जो आलस प्रमाद और निद्रा को लाए। और हमने ये देखा है व्यक्तिगत अनुभव से कि योगी अपने योग में आगे बढ़ता है, भोजन अपने आप सूक्ष्म होते जाता है, और उसी सूक्ष्म ऊर्जा से उसमें अदम्य शक्ति होती है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कभी कहा था, आई नेवर रिपेंट फॉर हैविंग ईटन लेस यस्टरडे। कल मैंने कम खाना खाया, इसके लिए मुझे कोई पश्चाताप कभी नहीं है। पश्चाताप हमेशा किसके लिए होता है, कम खाने के लिए या ज्यादा खाने के लिए? ज्यादा के लिए होता है, कम के लिए कभी नहीं होता है। तो भोजन पर नियंत्रण, संयम, ये योगी का लक्षण है। बहुत कुछ मिल रहा है अर्थात सभी खाऊं। किसी ने जगदीश भाई जी से पूछा था कभी, भाई साहब यहां इतना कुछ है, क्या क्या खाया और क्या नहीं? भाई साहब ने कहा था, तुमको किसने कहा खाने के लिए, तुमको जो चाहिए उतना लो एंड आउट। भोजन। उसके बाद है फैशन। ब्राह्मणों में भी फैशन, व्हाइट में भी फैशन, और फैशन की दुनिया में डूबे हैं, नए नए गॉगल, नए नए घड़ी, शूज, ड्रेस। भगवान को जीवन दे दिया है रंगीन से, अभी तक आकर्षण है, वो खींचता है, वो भी एक माया ही है। उसके बाद है झरमोई झगमोई, गॉसिप्स। इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये सब बाह्य मुक्ता है जो आत्मा की शक्ति कम कर देती है। हमें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, सारा ध्यान अपने ऊपर करना है। द अदर इज हेल, किसी एक फिलोसोफर ने कहा है, दूसरे का चिंतन बंद करो, द अदर इज हेल, नर्क है। सारा ध्यान स्वयं की ओर आकर्षित करो। और लास्ट है दसवा, हिच हाइकिंग। हिच हाइकिंग ये एक शब्द है, जब कोई गाड़ी जा रही होती है, हमारे पास कुछ वाहन नहीं, तो उसे हम रोकते हैं कि हमें लिफ्ट दे दो। ये ढूंढने में है कि कौन कहाँ जा रहा है और किसके साथ मैं घूमने जाऊं, साइट सीइंग, ये देखूं वो देखूं, यहां जाऊं वहां जाऊं, अब ये हो गया वो देखना बाकी है, सारी बुद्धि भटकने में, घूमने में। ये भी एक तकिया ही है जिसमें चेतना सो रही है, ये देख लूं वो देख लूं, ये कर लूं वो कर लूं, यहां जाऊं वहां जाऊं। और वहां जाने के बाद भी ये लक्ष्य नहीं है कि योग। कोई एक भाई बता रहा था, एक तीन चार ग्रुप एक रिट्रीट सेंटर पर गए भट्टी करने के लिए, तीन दिन की भट्टी। पहले दिन बाबा के कमरे में गए, योग किया, दूसरे दिन से साइट सीइंग चालू की, दो दिन गए थे भट्टी करने, और लास्ट के दिन बाबा के कमरे में बैठ के आ गए और सेवा केंद्र पर अनुभव सुनाया, बहुत पावरफुल योग भट्टी करके आए। सारा ध्यान था घूमने फिरने में। तो ये 10 बातें हैं, इन सभी से स्वयं को जगाना है। ये समय है तपस्या का, ये समय है कर्तव्य का, ये समय है जागरण का। और हम क्या कर रहे हैं, किस लिए हम यहाँ आए थे, क्या ये सब करने आए थे? ये तो संसार के लोग भी कर रहे हैं, फिर हमारे में उनमें क्या अंतर? हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन है, तपस्वी जीवन है, वैरागी जीवन है। धधकती वैराग की आग है वो इसमें। बाबा ने कहा तुम्हारी नींद फिट जाए, ऐसी तुमको चिंता हो संसार का, क्या करें हम, क्या दे संसार को, कैसे नींद आ सकती है जब इतने काम बाकी है। और ये काम दिन में नहीं होते, सुबह होते हैं, सुबह के समय। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात कम से कम 4 घंटा बैठा योग चाहिए, बहुत बड़ी तपस्या है। इतनी व्यस्त दिनचर्या में कोई ये नहीं कह सकता मैं बहुत बिजी हूं। बिजी तो सब है यहां पर, कौन है जो बिजी नहीं है? सब बिजी है, सब व्यस्त है, सबके पास सेवाओं के अंबार लगे हैं, परंतु सब कुछ करते हुए भी टाइम को चुराना, एक मिनट भी इधर से उधर वेस्ट नहीं। यहां बैठे हैं, यहां से भोजन के लिए जा रहे, चिंतन करते जाना है क्या सुना, भोजन कर रहे चिंतन करना है मुरली में क्या था, भोजन पूरा हुआ कहीं पर बैठने जाना है गप्पे हाँकते हुए। दादी जान की कहती थी सुनहरी टोली, 3-4 लोग मिलके इधर उधर की चर्चा करना, करनी है तो केवल ज्ञान की चर्चा, स्वयं को योग में डुबोना है। तो ऐसे इस डंडलक के तकिए से स्वयं को जगाना है। समय की ये नजाकत, समय का ये इशारा, समय का ये कॉल हम सब के लिए है। ओम शांति।
भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा। काल नगाड़ा सुना रहा, करना है जो कर लो भाई, भगवान चेतावनी सुना रहा, समय बीतता जा रहा, समय बीतता